स्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से जकरिया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है मसीह का आगमन और इस पुस्तक का लेखक स्वयं जकरिया नबी है, जिसके नाम का अर्थ है यहोवा स्मरण करता है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
मुझको मसीह के आने का अब इंतजार है, मुझको मसीह के आने का अब इंतजार है। ख्वाबों ख्यालों वो दिल के पास है, ख्वाबों ख्यालों वो दिल के पास है। मुझको मसीह के आने का अब इंतजार है।
प्रिय मित्र, प्रभुष्य के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से अपने परिवार और मित्रों के साथ परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत करता हूं, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से जकरिया नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक के द्वारा हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार अपने लोगों की रक्षा करता है और किस प्रकार अपने लोगों को उसकी संगति में बढ़ाता है। मेरे मित्रों, मैं अपने उन श्रोता मित्रों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे इस कार्यक्रम को सुनकर पत्र लिखते हैं, फोन के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं और अपनी गवाहियों को हम तक भेजते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप भी परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने के द्वारा हमें पत्र लिखेंगे और हमसे बातचीत करेंगे ताकि हम आपके साथ परमेश्वर को धन्यवाद देने पाएं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपकी निकटता में आकर आपके जीवित और सामर्थ्य और सच्चे वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं। आज जबकि हमारे श्रोता भाई बहन अलग अलग स्थानों पर बैठे हुए हैं, जंगलों में, शहरों में, गांव में, जहां भी हैं प्रभु, हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो इस समय रेडियो के निकट बैठे हैं, आप अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें। पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करें, ताकि वे आपके जीवित वचन को समझ सके, अपने जीवन में ग्रहण करने पाए और आपके वचन के अनुसार चल सकें। हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, संसार के प्रलोभन से आप उनकी रक्षा करें। आज के वचन के द्वारा आप उनसे बोले और बातचीत करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं ऐसे अवसर के लिए जो आप हमें प्रतिदिन देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम जकरयाह नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अध्याय 12 में यरूशलेम के घेराव और उसके बाद होने वाले महायुद्ध की चर्चा को देखेंगे जो इस पुस्तक में की गई है। यह महाक्लेश का समय है जिसके लिए प्रभु यीशु ने स्वयं ही कहा था कि ऐसा भयानक समय न तो पहले कभी हुआ था और न भविष्य में कभी होगा। महाक्लेश यानी कि महासताव आरंभ होने से प्रभु राज के युग को यहोवा का दिन कहा गया है। अतः हम यहोवा के दिन को 24 घंटों का एक दिन समझने की भूल ना करें। यहोवा का दिन महाक्लेश के कारण बुरा होगा तो उसके बाद प्रभु राज आने के कारण अच्छा भी होगा। मेरे मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने जकरयाह की पुस्तक उसके 12 अध्याय के एक पद में तीन महान भव्य कथन के बारे में देखा जो परमेश्वर को इस जगत और इस जगत की सब वस्तुओं का सृजनहार प्रकट करते हैं। और हमने पहला महान भव्य को देखा था कि वह आकाश का तानने वाला है, जिसे हमने भजन संहिता 79:1 में भी देखा। तब दूसरा महान भव्य हमने देखा, पृथ्वी की नींव डालने वाला, और आज हम तीसरे महान भव्य को देखेंगे और वह है, यह सबसे बड़ी बात है, मनुष्य की आत्मा का रचने वाला। मनुष्य इस पृथ्वी की सब सृजित वस्तुओं एवं प्राणियों से भिन्न है। वह पृथ्वी की सब वस्तुओं से ऊंचा है, परंतु वह स्वर्गदूतों के बराबर नहीं है। मंगल ग्रह पर जो जीवन नहीं है, परंतु यदि मनुष्य वहां रहने का प्रयास भी करे तो वह वहां से भाग निकलना चाहेगा। यद्यपि हमारे इस ब्रह्मांड में केवल हम ही मनुष्य हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर ने कहीं और जगह खाली है का बोर्ड लगाया हुआ है कि कोई भी वहां जाए और मनुष्य के रूप में रहना आरंभ कर दे। मेरे विचार में यदि हम सौर मंडल से बाहर निकलें तो स्वर्गदूतों को हर जगह पाएंगे, हमारे कैमरे उनका फोटो नहीं ले पाएंगे। यह पद परमेश्वर के सृजनहार होने का कैसा महान चित्रण हमारे लिए प्रस्तुत करता है। वर्षों पूर्व का मनुष्य विकासवाद में विश्वास नहीं करता था और मानता था कि परमेश्वर ने जगत की रचना की है, परंतु वह इसे त्याग कर चला गया है। परंतु इस पद से प्रकट होता है कि परमेश्वर इस जगत को त्याग कर चला नहीं गया है। जी हां, इस पद से प्रकट है कि परमेश्वर इस जगत में और इसके बाहर भी है। इस बाइबल अंश में आकाश मंडल में परमेश्वर के कामों का वर्णन किया गया है। वह हमारे जगत में सक्रिय है, हमारे इस जगत में ऊर्जा भरी हुई है। और मेरे विचार में परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर उतनी ही ऊर्जा रखी है जिसकी उसके पुनः आगमन तक ही की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, यहां स्पष्ट है कि परमेश्वर इस जगत में निश्चित एवं सकारात्मक कार्य कर रहा है। उसने मनुष्य की आत्मा को रचा है। वह सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वह सर्वसामर्थी परमेश्वर है, वह बुद्धि और ज्ञान है। जी हां, डॉक्टर अंकर का कहना है, यह अंश धर्मशास्त्र में अंत समय का सर्वोत्तम दर्शन प्रदान करता है, परंतु फिर भी अनेक जन अपने आप को रूढ़िवादी या सुसमाचार आधारित जन कहते हैं। तो आइए हम देखेंगे जकरिया के पुस्तक 12 अध्याय उसके 2 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखो मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के मद का कटोरा ठहरा दूंगा, और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा तब यहूदा की दशा भी ऐसे ही होगी। मेरे मित्रों, इस एक पद में 2 बार यरूशलेम का नाम लिया गया है। जैसा हम पहले कह चुके हैं कि इस अध्याय में 10 बार यरूशलेम का नाम आया है। यहां यरूशलेम ख्रिस्त विरोधी के राज में गतिविधियों का केंद्र होगा। यरूशलेम युद्ध का और परमेश्वर के दंड का केंद्र होगा। लिखा है, देखो मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के मद का कटोरा ठहरा दूंगा। ऐसा कब होगा? जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा तब यहूदा की दशा भी ऐसी ही होगी। यह वह समय होगा जिसे प्रभु यीशु महाक्लेश का समय कहते हैं। अतः यह पद भविष्य से संबंधित है, परंतु इसमें हमारे लिए महान शिक्षा है। डॉक्टर अंकर के शब्दों में, परमेश्वर यरूशलेम को नशे का कटोरा बनाएगा। किसके लिए? उनके लिए जो उससे संबंध रखेंगे। दूसरे शब्दों में, वे यरूशलेम के कारण लड़खड़ा जाएंगे। जकरिया के पुस्तक 12 अध्याय के 3 पद में वह आगे कहता है, लिखा है, उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी, तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। परमेश्वर के कहने का अर्थ है कि यरूशलेम के साथ उचित व्यवहार न करने वाले हानि उठाएंगे। यह कोई और स्थान नहीं, यरूशलेम है। परमेश्वर यरूशलेम के साथ यहूदा को जोड़ता है, जिससे अति स्पष्ट है कि यरूशलेम प्रतीक नहीं, इसराइल का नगर यरूशलेम ही है। आगे कहता है, तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा। मेरे मित्रों, यह बात कुछ विचित्र प्रतीत होती है। आज यरूशलेम एक परित्यक्त पुराना शहर है जो देखने में भी आकर्षक नहीं है। यद्यपि वहां अनेक पवित्र स्थल हैं, मैं कुछ अन्य स्थानों को यरूशलेम से अधिक मनोहर पाता हूं। मुझे यरूशलेम में ठहरना इसलिए अच्छा लगता है कि वहां अनेक बाइबल संबंधित बातें हमें देखने को मिलते हैं। अंतिम दिनों में यरूशलेम का महत्व ऐसा महान क्यों है? यद्यपि वह स्थान आज भी एक भारी पत्थर है, परंतु हमने अभी तक भविष्यवाणी की पूर्ति वहां नहीं देखी है। भविष्यवाणी भावी योजनाओं से संबंधित है। हम आज जो कुछ देखते हैं वह भविष्य की तुलना में कुछ भी नहीं है। विश्व शक्तियों की सूची को आप देखें, जिन्होंने यरूशलेम पर राज किया है। इंग्लैंड ने अपने युग में वहां राज किया और यही कारण है कि उस बरतानिया राज का सूर्यास्त हो गया, जिसके लिए कहा जाता था कि उसका सूर्यास्त कभी नहीं होता है। परमेश्वर कहता है उससे दूर रहो, उसका प्रबंध मेरे हाथ में है। जी हाँ, हर एक व्यक्ति, हर एक राज्य परमेश्वर के अधीन है, उसके हाथ में है। हम यह न सोचें कि सब कुछ मेरा है। जकरिया आगे कहता है 12:4 में, यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं हर एक घोड़े को घबरा दूंगा और उसके सवार को घायल करूंगा, परंतु मैं यहूदा के घराने पर कृपा दृष्टि रखूंगा, जब मैं अन्य जातियों के सब घोड़ों को अंधा कर डालूंगा। यहां फिर से परमेश्वर कहता है उस समय। इस पुस्तक के अंत तक यह उक्ति बार बार आएगी, घोड़े का घबराना और उसके सवार का घायल होना, यह दर्शाता है कि युद्ध में अव्यवस्था हो गई है। परमेश्वर कहता है कि वह इसराइल के आक्रमणकारियों को निष्प्रभाव कर देगा। जकरिया 12:5 में आगे लिखा हुआ है, तब यहूदा के अधिपति सोचेंगे, यरूशलेम के निवासी अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की सहायता से मेरे सहायक बनेंगे। उस समय यरूशलेम परमेश्वर के जनों के लिए शरण स्थान होगा। चारों ओर से बैरियों की सेना द्वारा यरूशलेम का घेराव ख्रिस्त विरोधी की गतिविधियों के कारण होगा, परंतु परमेश्वर उनकी ओर से हस्तक्षेप करेगा। परमेश्वर का त्याग करने पर भी परमेश्वर उनकी ओर से हस्तक्षेप क्यों करेगा? इसका उत्तर यहां पर है। जकरिया 12:6 में लिखा है, उस समय मैं यहूदा के अधिपतियों को ऐसा कर दूंगा जैसी लकड़ी के ढेर में आग भरी अंगीठी या पूले में जलती हुई मशाल होती है, अर्थात वे दाहिने बाएं चारों ओर के सब लोगों को भस्म कर डालेंगे और यरूशलेम जहां अब बसी है वहां बसी रहेगी, यरूशलेम में ही रहेगी। यह इसराइल का यरूशलेम है, अन्य कोई स्थान नहीं है। परमेश्वर यरूशलेम और यहूदा को स्पष्ट व्यक्त करता है, कहता है जकरिया नबी की पुस्तक उसके 12:7 में, यहोवा पहले यहूदा के तंबुओं का उद्धार करेगा, कहीं ऐसा न हो कि दाऊद का घराना और यरूशलेम के निवासी अपने अपने वैभव के कारण यहूदा के विरुद्ध बड़ाई मारें। दूसरे शब्दों में यरूशलेम वासी देश के अन्य लोगों को तुच्छ जानेंगे। हमारे देश में भी ऐसा ही होता है, यहां तक कि कुछ लोग तो पत्र में मेरे लिए भी कह देते हैं कि मेरे उच्चारण सुनकर वे सोचते थे कि मैं अज्ञानी हूं, परंतु वे कहते हैं कि उन्होंने मेरा प्रचार सुना है। मेरे कहने का अर्थ है कि यह हमारी मानसिकता है। जकरिया कहता है कि यदि परमेश्वर पहले यरूशलेम और फिर दाऊद के घराने को दर्शन देगा तो वे शेष यहूदा वासियों को तुच्छ जानेंगे, परंतु वह कहता है कि वह पहले यहूदा के तंबू का उद्धार करेगा। मेरे मित्रों, आपको स्मरण होगा कि मत्ती रचित सुसमाचार 19:30 में परमेश्वर कहता है कि जो पीछे हैं वे आगे किए जाएंगे। मेरे विचार में स्वर्ग में हम आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते थे वे स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, वे वहां दिखाई देंगे। दूसरी ओर हम कुछ लोगों को खोजेंगे जिसकी हम आशा रखते हैं, तो वे वहां नहीं होंगे। वहां हम उन्हें देखकर भी चकित होंगे जिन्हें परमेश्वर अपने दास और विश्वास योग्य जन कहता है, क्योंकि उन्होंने वही किया जो परमेश्वर चाहता था। ये लोग हमारे चुने हुए नहीं होंगे, यहाँ परमेश्वर स्पष्ट कहता है, यहोवा पहले यहूदा के तंबुओं का उद्धार करेगा। इससे यरूशलेम और दाऊद का घराना कुछ सोचने पर विवश होगा। जकरिया के पुस्तक 12 अध्याय के 8 पद में लिखा हुआ है, उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा, और उस समय उनमें से जो ठोकर खाने वाला हो वह दाऊद के समान होगा, और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा, अर्थात यहोवा के उस दूत के समान जो उनके आगे आगे चलता था। यहां पर हम देखते हैं लिखा है, उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा, और उस समय उनमें से जो ठोकर खाने वाला हो वह दाऊद के समान होगा। दाऊद एक योद्धा था। यदि आपको विश्वास ना हो तो उसके पुत्र अबशालोम के बारे में आप पढ़ें या पढ़ करके देखें कि दाऊद ने इसराइल को कैसे संगठित किया था, उसने पलिस्तियों को कैसे अपने वश में किया। वह एक महान प्रबंधक था, एक अति निपुण योद्धा था, रणनीति का विशेषज्ञ और सेनापति था, अद्भुत योग्यता का मनुष्य था। उस समय सबसे दुर्बल मनुष्य भी दाऊद के समान शूरवीर होगा। आगे लिखा है, और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा। मेरे लिए यह एक अति रोमांचकारी बात है, दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दाऊद के घराने से एक मनुष्य परमेश्वर था, वह प्रभु यीशु था। जी हां, यूसुफ और मरियम बेतलहम नाम लिखवाने के लिए गए हुए थे क्योंकि वे दाऊद के वंश से थे। मत्ती रचित सुसमाचार 1:1 में लिखा है, अब्राहम की संतान दाऊद की संतान यीशु मसीह की वंशावली। नए नियम में सबसे पहली बात लिखी गई है कि प्रभु यीशु दाऊद का पुत्र था। जकरिया की पुस्तक 12 अध्याय उसके 9 पद में लिखा हुआ है, उस समय मैं उन सब जातियों का नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगी। ध्यान दीजिए, सब देश यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठा होंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में इसका बृहत विवरण दिया गया है। सब भविष्यवाणियां एक रेलगाड़ी के समान है जो स्टेशन पर आ रही हैं। बाइबल की सब महान भविष्यवाणियां प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आकर केंद्रित होती हैं, जैसे एक बड़े हवाई अड्डे पर सब हवाई जहाज आकर खड़े हो जाते हैं। मेरे मित्रों, यह परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर हमें इस बात के द्वारा अवगत कराता है कि परमेश्वर अपने लोगों की चिंता किस प्रकार से करता है। यहाँ पर यरूशलेम में, यहूदा में और वहाँ उसके लोगों के जीवन में हम सब बातों को देखते हैं। वह कहता है कि यरूशलेम में, अर्थात यरूशलेम को सब लोग घेर लेंगे, लोग वहाँ पर इकट्ठा होंगे। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे भी यही कहता है कि हमें लोग घेरेंगे, हमें लोग सताएंगे, परंतु हमें परमेश्वर की ओर फिरना है। मेरे प्रियो, बाइबल एक महान भविष्यवाणी की पुस्तक है जो हमें हर एक बातों को बताती है। जिसमें परमेश्वर का वचन है वह निश्चय ही सत्य है। आज वह आपके जीवन में भी, मेरे जीवन में भी, हर एक के जीवन में भी चाहता है कि उसकी वाणी हम तक पहुंचे। क्या आज आप उस महान परमेश्वर को जानते हैं जिसने आपको बनाया है? क्या आप जानते हैं कि जो पाप आपने किया है उसे कौन क्षमा कर सकता है? केवल एक व्यक्ति है और वह है प्रभु यीशु। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं। यदि आप सुन रहे हैं तो थोड़ा ठहर कर अपने जीवन में विचार करें और प्रभु यीशु को अपने जीवन में आने दें। आप पाएंगे कि आपका जीवन शांतिमय जीवन होगा, क्योंकि प्रभु यीशु शांति का राजकुमार है। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा ही नहीं परंतु पूर्ण विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबके साथ हो और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
संभल जा, वो आ रहा है राजा। अरे जरा संभल जा, वो आ रहा है राजा। कहना उसी से जो भी तेरे दिल में आज है, कहना उसी से जो भी तेरे दिल में आज है। ख्वाबों ख्यालों वो दिल के पास है, ख्वाबों ख्यालों वो दिल के पास है। मुझको मसीह के आने का अब इंतजार है। उसने मुझको है गुनाह से बचाया, जिस दिन से उसने मुझको है गुनाह से बचाया, उस दिन से अब तलक वो मेरे सर का ताज है। उस दिन से अब तलक वो मेरे सर का ताज है। ख्वाबों में ख्यालों में वो दिल के पास है, ख्वाबों ख्यालों वो दिल के पास है। मुझको मसीह के आने का अब इंतजार है, मुझको मसीह के आने का इंतजार है मुझको मसीह के आने का इंतजार है।